परमपिता परमात्मा की यह मन भावन व मनोहर धरा को जब हम नजदीक से देखते हैं या मधुबन की धरा पर परमात्मा के कार्य को देखते हैं तो लगता है कि यहाँ का हर शैल शिखर माणिक्य से चमकता है। पूरा मधुबन चंदन की मधुर शीतलता और खुशबू धारण किए है। इन सभी गुणों से सुसज्जित शिव बाबा के राइट हैंड, मधुर वाणी के धनी, बाप दादा के हर बोल को आत्मसात करने वाले यज्ञ के मजबूत स्तंभ रमणीक आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी का हमारे मध्य हम सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई साहब से मिलकर चंद पंक्तियां याद आती हैं। बयां करे जो गहरे रास को बड़ी रमणीकता से, बयां करे जो गहरे रास को बड़ी रमणीकता से, जरूर वो उस परम कारीगर की ही कारीगरी होगी। भ्राता जी का जन्मोदय पंजाब के ऐतिहासिक शहर अमृतसर में 1934 में हुआ। कुशाग्र बुद्धि के धनी भ्राता जी ने 1955 में LLB की पढ़ाई के मध्य अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। आप CA की पढ़ाई कुशलता पूर्वक संपन्न करने के बाद FCI में फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखते हुए एक तरफ आपने मैनेजर पद की जिम्मेवारियां निभाई और दूसरी तरफ इस ईश्वरीय सेवा में 4 चांद लगाए, जो हम सभी के लिए एक जीवंत उदाहरण है। 1973 में आप पूर्ण रूप से यज्ञ में समर्पित हुए। तब से लेकर आज तक ददीची ऋषि मिसल यज्ञ में आप हड्डी सेवा कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में अनुकरणीय सेवा प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में आप संस्था के जनरल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं। आज हम सभी ब्रह्मावत्स आपके वचनामृत का श्रवण करेंगे। विषय है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। इस डायमंड हॉल में प्यारे बाबा ने इस पर प्रकार की व्यवस्था कराई है कि भिन्न भिन्न टर्न बाय टर्न जोन वाले भाई बहन यहाँ आते हैं, बाबा मिलन करते हैं। लेकिन कहा गया है विशेष, तो विशेष आत्माएं ही ये भाग्य प्राप्त करती हैं, क्योंकि ये भाग्य कल्प में एक ही बार मिलता है। फिर विशेष में भी विशेष होते हैं, तो वो कौन है? तो बाबा ने हमें बताया है आद मध्य अंत का राज के विश्व परिवर्तन हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उत्थान पतन, लेकिन एक चीज स्थायी रहती है और वो है दिल्ली। दिल्ली सतयुग में भी राजधानी थी, आज भी राजधानी है। इसलिए इस डायमंड हॉल में विशेष में विशेष जो दिल्ली वाले पधारे हैं, बाबा ने पहले ही कह रखा है एक चीज सतयुग से कलयुग तक रहती है स्थाई। ये अलग बात है कि पहले वो ठाकुर की दिल्ली थी, बाद में वो ठिकर की दिल्ली बन जाती है, पर दिल्ली तो दिल्ली है। कौन सा ऐसा धर्म नहीं दुनिया का जिन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई ना की हो, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अगर उमंगों के पंख दिल्ली वाले लगे तो हुए हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से खोल करके उड़ान भरें तो बाकी सारे उनके पीछे पीछे उड़ान भरेंगे। तो दिल्ली वाले वैसे भी एग्जाम्पल सेट करते रहे हैं, और इसमें भी एग्जाम्पल सेट करें। अब बाबा कहते हैं कि देखिए, मुझ परमात्मा ने नजर डाली जब धरती पर घोर अंधकार था, तो बाबा प्रकाश देने के लिए अवतरित हुए। तो बाबा ने ऐसा जादू का कर्तव्य किया कि देवी देवता बना दिया। देवी देवता से ऊंचा कोई होता नहीं, हम सब ज्ञानी हैं, देवी देवताओं की दुनिया में रहे हैं और जाने वाले हैं। तो एक सेकंड के लिए देवी देवताओं के सतो भगवान सत्युगी स्वर्ग का सीन सामने लाइए। फिर भगवान कहते हैं कि सूर्य वंश की राजगद्दी पूरा एक युग चलती है, चंद्र वंश भी चलता है। तो इससे बड़ी प्राप्ति मनुष्य आत्माओं को देवता बना देना, सारे विश्व का राज दे देना, इससे बड़ी संपत्ति किसी की हो नहीं सकती। तो जो इतने संपत्तिवान हैं, अगर वो उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? कोई फकीर रहेगा? कोई गरीब रहेगा? मुझे एक फकीर की कहानी याद आ रही है, क्योंकि कहानी सुनने का सबको बहुत इंटरेस्ट होता है। एक राजा थे, बहुत धनवान थे, आधी आयु 50 साल से ऊपर हो गए थे। तो किसी ने उनको कहा, महाराज जीते जी जो दान करता है ना, उसका पुण्य बनता है, मरने के बाद क्या? तो आपके पास इतना धन है, आप राजधानी के सभी बाशिंदों को बांटना शुरू कर दीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली और रोज वो 11 बजे से 1 बजे तक धन की थैलियां बना लेते थे, प्रजा की लाइन लग जाती थी और उनको धन बांटते थे। एक फकीर था, वो भी लाइन में लग गया। अब जब उसका टर्न आता था राजा के पास, तो वो कुछ नहीं लेता था, थैली नहीं लेता था, वापस जाके लाइन में लग जाता था। फिर बहुत समय बाद उसका टर्न आता था, फिर वो थैली नहीं लेता था, वापस लाइन में लग जाता था। तो मीडिया वालों ने राजा की तो इतनी पब्लिसिटी नहीं की जो रोज धन बांटता था, फकीर की बहुत पब्लिसिटी हो गई कि देखो एक ऐसा व्यक्ति है। तो राजा को ईर्ष्या हुई, वो कोई बीके तो नहीं था जिसको ईर्ष्या ना हो। उसने उसको बुलाया और कहा, देखो भले मानस, जितनी थैलियां चाहिए ले लो, पर ये नाटक बंद करो। वो तो फकीर था बेचारा, कहा जहां बना महाराज, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हो? बोला कि मैं दूर लाइन से देखता रहता था कि जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है, जब आप थैली देते हैं आपको मुस्कुराहट आती है। तो मैंने सोचा کہ دینے میں خوشی ہے، اس لیے میرے پاس تو دینے کو کچھ تھا نہیں، تو میں اپنا ٹرن دے دیتا تھا تو مجھے خوشی ہو جاتی تھی۔ اب اس کا ارتھ کیا ہوا کہ بابا نے کہا کہ میں نے بچوں کو دیوتا بنایا، ستیوگ میں تو کچھ دیتے نہیں، نہ کوئی لینے والا ہے وہاں، تو دیوتا کہاں بنے؟ سنگم پر بنے، ایسے دیوتا بنے جو ان کا نام دیوتا پڑ گیا، جبکہ ستیوگ تریتا میں کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اچھا اب بابا کیا کہتے ہیں، میں نے تو تم کو اتھا دھن دیا، اتنا کچھ دیا، ڈبل لائٹ بنایا، گیان، یوگ، دھارنا، سیوا، سب بچے بھرپور ہیں، اتنا بھرپور ہوتے ہوئے، اتنی بڑی پرالبدھ کے مالک ہوتے ہوئے، پھر اگر امنگ اتساہ میں نہیں رہیں گے، اڑتے نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ تو بھگوان کہتے ہیں کہ دیوتاؤں سے بھی زیادہ اتم اور پوجے جانے والے دیوتا گولڈن ایج کے ہیں، برہمن ڈائمنڈ ایج کے ہیں، آپ ڈائمنڈ ہال میں بیٹھے ہیں۔ تو ایک ہی کارن تھا کہ جو کچھ پراپت ہوا ہے اس کو دینا ہے، تاکہ ہمارا نام دیوتا رہے، اور ہم کو وہ چیز دینی ہے۔ بھگوان نے یہ بھی کہا، فقیر تو بیچارہ ٹرن دیتا تھا، بابا کہتے ہیں آپ وہ دیتے ہو جو دینے سے بڑھتا ہے، اور بھی لو۔ ایسا کوئی بزنس دیکھا ہوگا کہ پہلے تو دینے کی خوشی، پھر دینے سے وہ بڑھتا ہے۔ ہم ہر انوگریل سیریمنی میں دیپک جلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھارتیہ پرمپرا کے انوسار ہر کاریہ دیپ پرجولن سے شروع ہوتا ہے، لیکن دیپ پرجولن کا بھاو کیا ہے کہ آپ ایک دیپ سے دوسرا جلائیں گے تو پہلے والے کی لائٹ گھٹے گی تو نہیں، تو بھاو یہ ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے، ایک دیپ سے آپ سارے جلا دیتے ہو۔ تو اسی پرکار سے خوشی ہے ہمارے پاس، آج کا ویکت اشارہ بھی ہے، آپ خوشی بانٹو گے آپ کی خوشی بڑھے گی، تو ہمارا تو بزنس بھی اچھا ہے، پھر امنگ اتساہ کیوں نہیں؟ تو بابا نے آج بھی کہا ہے کہ ہم بچوں کو باپ سمان بننا ہے، کیونکہ باپ کو صدا امنگ اتساہ رہا۔ شیو بابا تو آپ جانتے ہیں سنگم یوگ پر آتے ہیں تو ایسا بڑا کاریہ کر دیتے ہیں، شیو بابا کا تو شریر ہی نہیں ہے، وہ تو سوتے بھی نہیں، ریسٹ بھی نہیں کرتے۔ برہما بابا نے بھی فالو کیا، برہما بابا نے سوچا شریر کا تو بندھن ہے، اویکت ہو کر کے کیا، اب دو دو انجن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہے، اور کوئی کام ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا کام ہے؟ کہ اپنے بچوں کو سدا اڑتے رہنا اور اڑاتے رہنا سکھانا، اور وہ امنگ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پنچھی کے پر کے اوپر لکھا ہوا، ایک پر کے اوپر ہے امنگ، دوسرے کے اوپر ہے اتساہ، لیکن پر کے نیچے لکھا ہوا ہے آلس اور الویلا پن۔ اچھا اب آلس اور الویلا پن نہ آئے تو بابا نے آج ایک ہم کو منتر دیا ہے باپ سمان کا۔ بابا کہتے ہیں دنیا کے لوگ کیا مانگتے ہیں بھگوان سے، دیا، کرپا، کھما۔ ہے پرماتما ہم نے تو ریک پاپ کیے ہیں، ہمیں کھما کر دو۔ ہے پرماتما ہمارے اوپر دیا درشتی رکھو۔ اور آج کے زمانے میں جبکہ اتنا اتیاچار ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، تو سب پکارتے ہیں ہے بھگوان آپ ہی ہمیں بچاؤ، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ بھگت لوگ بھی بیچارے تھک گئے ہیں، آخر پرماتما کو ہی کہتے ہیں بابا کچھ دے دو۔ تو اس لیے بابا نے کہا ہے اگر ہمیں देना है, देना के लिए हमारे पास सत्ता है, लेकिन क्यों नहीं देते कि देने के लिए दया की भावना चाहिए, क्षमा की भावना चाहिए, कृपा की भावना चाहिए। और ये तो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि हर चीज अपने से शुरू होती है, तो पहले हम किस पर दया करें, पहले हम किस पर दया करें, अपने पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने पर दया करो, अपने पर कृपा करो। दुखियों मेरे को पुकार रहे हैं, मेरे समान बनो, तुम मास्टर दाता हो तो दुखियों की आवाज सुनो, भक्तों की आवाज सुनो और दो। पहले अपने लिए भी अपने ऊपर दया करो कि तुमको इतना, भगवान कहता है मैंने इतना भरपूर किया, इतना लोक पर लोक का ज्ञान दिया, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराई, इस नरक जैसी दुनिया में तुमको फरिश्ते बनाया, अलग से तुम्हारा ब्राह्मण कुल बनाया, अलग से तुम्हारी परंपराएं बताई बनाई, अलग से तुम्हारे स्वच्छ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए मर्यादाएं बनाई, वो आप फॉलो कर रहे हो, फिर एक ही बात है कि दया करो। लोग भगवान को कहते हैं दया करो, भगवान कहते हैं मैं मेरे बच्चों के द्वारा ही मैं दया करता हूं, मेरे बच्चों दया करो। अगर हम सचमुच सचमुच दयालु बन जाएं, तो क्या देखेंगे, हम सोचेंगे कि क्या सचमुच हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं। भगवान ने हमको बता दिया कि संगम का युग है, जहां आपके हाथ में कलम है, आप अपना भाग्य जितना चाहो जितना चाहो जितना चाहो बना सकते हो, जितनी लंबी लकीर खींचने चाहो खींच सकते हो। आपका जन्म ही भाग्यशाली जन्म है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली आत्मा हो, ये बाबा ने हमें जन्म के वक्त बताया। लेकिन भाग्यशाली के ऊपर सौभाग्यशाली, सौभाग्य के ऊपर शाली के ऊपर पद्मा पद्म भाग्यशाली, वो तो हमारे हाथ में। अब क्या हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं? किसी को कहा जाए कि हीरे की खान है, टाइम लिमिट है, या तो तुम्हारा शरीर ना छूट जाए या एक टाइम लिमिट है, खान बंद ना हो जाए, जितने हीरे चाहो लूट सकते हो, फ्री है, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो खाना पीना भी भूलकर, सोना भी भूलकर, आराम भी भूलकर वो कहेगा हीरे, और इस दाम पे वो हीरे लेने के अंदर लग जाएगा और बाकी चीजों में थोड़े से थोड़ा टाइम लगाएगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? जो समझते हैं कि ऐसा करने के लिए कुछ मार्जिन है, वो जरा हाथ उठाओ। तो जो नहीं उठाएंगे, हम समझेंगे वो ऐसा कर रहे हैं, दिन रात नहीं उठाते। बाबा कहते हैं कि दिन रात बच्चों को मलाई मस्ती रहनी चाहिए, नारायणी नशा रहना चाहिए, अजीब तरह की खुमारी रहनी चाहिए, दुनिया की सुधबुद नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी तो होता है, बहुत बार होता है, लेकिन सदा रहना चाहिए, क्योंकि संगम युग है। इसलिए कारण यही है कि हम अपने ऊपर ही दया नहीं कर रहे पूरी, तो उसी अनुसार दुनिया के ऊपर भी कभी कभी कर देते हैं। दिन त्योहार के दिन हम दया कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, उनके लिए प्रोग्राम रख देते हैं, बस। जबकि बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग का एक मिनट कितनी प्रारब्ध के बराबर है, संगम युग कितना है और प्रारब्ध का पीरियड कितना है। बाबा कहते हैं दो युग तो है ही, उसके बाद भी 3/4 बाबा की प्रारब्ध चलती है। तो उसकी भेंट में ऐसा संगम युग जो प्रभु पालना हमको मिल रही है, प्रभु का कंबाइंड रूप मिल रहा है, हर प्रकार से हमें अनुभव है, तो ऐसे में हम कभी कभी, जैसे क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च में जाते हैं, मुसलमान लोग जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं, हम रोज सेंटर में जाते हैं या मुरली सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बाबा हमको रिमाइंड भी कराता है, क्या सारा दिन रहता है, क्या हम उसी उमंग उत्साह से कि हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम इस दुनिया को साफ नहीं करेंगे, आत्माओं को शक्ति दे करके उनको पवित्रता की ओर नहीं ले जाएंगे, उनको शांति की अनुभूति नहीं कराएंगे, तो नई दुनिया कैसे आएगी। बाबा ने तो हमको साधन दिए हैं, अब बाबा ने कहा आपके साधन बड़े सूक्ष्म हैं, अब आप देखिए निराकारी, अब निराकारी कहना तो बहुत आसान है, आप जरा सोचिए निराकारी का मतलब क्या होता है। इस बोलने चालने रंग रूप की दुनिया कर्म क्षेत्र से हटकर एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहां आप खाली बिंदु रूप हैं और चारों तरफ बिंदु ही बिंदु हैं। संगम पर तो हमें पता भी है, वरना निराकारी दुनिया में जाके ये भी नहीं पता लगता कि मेरे इधर उधर जो बिंदु हैं वो कौन है। तो ऐसी सुन शांत डेड साइलेंस की दुनिया, उससे हम आए थे, क्योंकि बीज का काम ही होता है पौधा बनना। अगर हम आत्म स्वरूप में ही रहते तो हम कुछ एक्ट नहीं कर सकते थे, ना सुख ले सकते थे, ना दुख ले सकते थे। तो आत्मा के अंदर स्वाभाविक संस्कार है कि जब उसका समय आता है तो उसके अंदर चुरपुर होती है कि मैं धरती पर जाऊं और अपना पाठ शुरू करूं। जैसे आलू होता है, आलू का जब सीजन आता है उसमें आंखें निकल आती हैं, या आपके घर में या सेंटर में या पास कहीं पेड़ खड़ा है, वो खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, जब उसका सीजन आता है, मान लो आम का पेड़ है, खड़ा रहेगा जैसे परम धाम में हो, जब सीजन आएगा तो आप देखिए उसमें चुरपुर शुरू हो जाएगी, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, सीजन पूरा होकर फिर वो अपने परम धाम में यहीं चला जाएगा। इसी प्रकार से उस धाम से बाबा ने हमें भेजा तो हम निराकारी से साकारी में आए, और साकारी में सुख के शरीर भी लेते रहे, गलती के कारण दुख, लेकिन शरीर लेते 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 हमने अपने आप को शरीरी मान लिया। जैसे पेड़, कोई कहेगा पेड़ से आम निकल रहे हैं, कोई बीज को याद नहीं करेगा बीज था जिससे ये पेड़ निकला, लेकिन बाबा कहते हैं मैं क्योंकि बीज हूं, आपको भी बीज बनाकर लेने आया हूं दुख से छुड़ाने। तो बाबा कहते हैं अब रिटर्न जर्नी है, बहुत साल पहले हम आए थे तो आ गए, खुशी खुशी आ गए, अब यहां आके फंस गए, बंधन में आ गए अपनी अकलमंदी के कारण, अब दुख भोग रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम कईयों को तो ये भी नहीं पता लगता कि ये दुख की दुनिया है, माया का ऐसा चक्कर है। फिर तुमको मुझे रिटर्न जर्नी में वो बिंदु बनाना है, और इस समय भले परम धाम सारा कल्प में डेड साइलेंस है, लेकिन इस समय परम धाम को
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
लेकिन इस समय परम धाम केवल साइलेंस होम नहीं है जो ये सारा कल्प होता है। इस समय बाबा ने परम धाम को स्वीट साइलेंस होम कहा है। परम धाम के गेट ब्राह्मणों के लिए खुले हैं, और यहाँ तक कि ब्राह्मण किसी भी समय परम धाम में जाकर के जो बाबा ने परम धाम बताया हुआ है कि परम धाम में मैं परम पिता परमात्मा रहता हूँ, मेरे निकट में ब्राह्मण और देवताओं की आत्माएं रहती हैं, सबसे निकट फिर क्षत्रियों की रहती हैं, तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग से परम धाम में अपने को पहुँचा करके तुम विक्रम विनाश कर सकते हो, अर्थात स्वर्ग के गेट तो बाबा ने अभी नहीं खोले, परम धाम में फाइनल जाने के गेट तो नहीं खोले, लेकिन परम धाम में आना जाना हमको अलाउड है। और रास्ते में बाबा ने कहा बिंदु रूप धारण करने के पहले साकार से सीधा बिंदु नहीं बन सकते आसानी से, तो तुमने सूक्ष्म लोक भी बना के दिया है। सूक्ष्म लोक भी 24 घंटे खुला है, जहां पर बाबा कहते हैं आप अपने सूक्ष्म रूप में रह सकते हो। इस स्थूल रूप से सूक्ष्म में और बिंदु रूप में जाना बाबा ने इतना आसान कर दिया है। अगर हम वो तीन बातें याद रखें, इस साकार में हमें निरहंकारी रहना है। अहंकार का अर्थ है देहभान, तो हमें निरहंकारी रहने का मतलब है अशरीरी रहना है। तो जितना हम इस साकार लोक में अशरीरी रहकर, निमित रहकर, डिटैच रहकर, निस्वार्थ रह के कर्म करेंगे, उतना हम आसानी से सूक्ष्म शरीर धारण कर सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर में हम, आप जानते हैं कि संकल्प मन में चलते हैं, उसमें हम निर्विकारी रहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी बुद्धि चलती रहती है। उसमें हमारे बुद्धि के अंदर, जैसे बाबा कहते हैं कि शुभ और शुद्ध और पवित्र संस्कार रहेंगे। पवित्रता, बाबा ने क्या कहा कि पवित्रता ही आपकी प्रॉपर्टी है, पवित्रता ही आपकी रॉयल्टी है, पवित्रता ही आपकी पर्सनैलिटी है। तो उतना ही आसानी से हम बिंदु रूप बन सकते हैं। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। अगर हमको ये पता है, मान लीजिए विनाश के बाद या अपने शरीर छोड़ने के बाद हम बाबा के सामने खड़े होते हैं, तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे क्या तक दिक्कत थी तुमको निरहंकारी बनने से, और उसके बाद मन में से विकारों को निकाल करके श्रेष्ठ बनने के, क्योंकि तुमने तो परम धाम में आना है। तो हम देखेंगे, अरे हम तो भाव स्वभाव में, हम तो ईर्षा द्वेष में, मेरे तेरे में, छोटी 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 लिमिटेड बातों में अपना संगम युग गवाते रहे। ये मेरा है, ये तेरा है। भगवान कहता है, जैसे बाबा ने बताया कि बड़े बड़े विकार तो समझ में आ गए हमारे, लेकिन किसी भी चीज के छोटे छोटे पुंगरे होते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं। किसी जानवर के भी छोटे पुंगरे देखोगे ना, आपको अट्रैक्टिव लगेंगे। मनुष्य के बच्चे देखो, कहीं बहुत छोटे छोटे कहीं बेबी हाउस में आपको इधर उधर घूम रहे अच्छे लगेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये तीसरी आंख उस छोटे छोटे जर्म्स को, जैसे दूरबीन से या माइक्रोस्कोप से जर्म देखे जाते हैं, कीटाणु देखे जाते हैं, कीट अणु यानी बहुत छोटे छोटे कीड़े, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तीसरी आंख से आप उनको देख सकते हो। तो ऐसा ना हो हमें बाबा माला माल कर दे, बादशाही कारों का खजाना दे दे, और हम इसी में लगे हुए उसको देने में कोताही कर दें। हमारे पास बहुत धन है, हमने कभी यूज ही नहीं किया, उसको देखकर खुश होते रहते कि वाह हम सतयुग में जाएंगे, हमारे पास इतना ज्ञान है। तो फिर बाबा कहते यूज नहीं करोगे तो आपके काम नहीं आएगा। आजकल बाबा यही कह रहे हैं कि जितना कुछ मैंने बच्चों को दिया है उसको यूज करो। यूज करने का अर्थ है कि सारे विश्व की आत्माओं को जिस प्रकार का अप्राप्ति है, जिस प्रकार की उनको कमी है, वो इच्छाओं में मतलब बिल्कुल ही खोए हुए हैं, या भगत लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, या दुखी लोग हैं, उनको देना हमारा फर्ज है। बाबा ने हमें फायर ब्रिगेड बनाया। तो सार क्या निकलता है? सार यही निकलता है, बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैंने कहाँ से लेकर कहाँ ले आया, ये तो सारे बच्चे समझते हैं कि अब ब्राह्मण कुल, इतना श्रेष्ठ कुल, इतना बड़ा कुल, इतना प्रतिष्ठित कुल हो गया है कि दुनिया भी उसका सम्मान करने लग गई है। अब बाबा कहते हैं आपकी धारणाओं के अनुसार मैं आपकी प्रत्यक्षता भी करवा रहा हूँ। प्रत्यक्षता होने से खुशी होती है, बाबा का ज्ञान दुनिया समझे उससे खुशी होती है। कौन सोचता था कि बाबा भारत के राष्ट्रपति एक ब्रह्मा कुमारी को बना देगा, कौन सोचता था? आप सोचिए। बाबा कहते थे भले हम बाबा के बच्चे राष्ट्रपतियों से मिलते रहे, राष्ट्रपति यहां आते रहे, कि एक दिन राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा, बाबा ने कहा था तो करके दिखा दिया। हम किसी के मन में ये नहीं था जो हम ज्ञान में चलते हैं यज्ञ में, एक दिन ऐसा भी आएगा कि भगवान ब्रह्मा कुमारी को राष्ट्रपति बना देगा। कितना फर्क उससे पड़ जाता आप सोच सकते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर पूछते हैं, अरे वो ब्रह्मा कुमारी अच्छा वो ऐसा खाना नहीं खाती, उसने नियम बदल दिए हैं आदि आदि। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम करवा करके कहां साधारण बच्चे, बिल्कुल नया ज्ञान, नई दुनिया का ज्ञान जो आत्मा से शुरू होता है, और सारी दुनिया के ज्ञान में आत्मा है ही नहीं, है तो उल्टे रूप में है, आत्मा परमात्मा है आदि आदि, आत्मा पशु जोनियां लेती। तो उस आत्मा के ज्ञान से बच्चों की मैंने तीसरी आंख खोली और उससे हमारा टोटल सोच ही बदल गई। इस दुनिया में रहते हुए भी हम न्यारे हो गए और उसका हमें कितना सुख और आनंद मिलता है। किसी को आप तीसरी आंख खोलते हैं वो कितना जबरदस्त चेंज फील करता है, जैसे हमने फील किया था, तो कितनी आपको दुआएं देता है क्योंकि आप निमित्त बनते हैं। बाबा कहते हैं मैंने ये भी कहा है कि बच्चों ने स्थान स्थान पर अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से सेवा की है, और ये सेवा कोई ऑर्डिनरी सेवा नहीं है, ईश्वरीय सेवा है, नया ज्ञान देने की सेवा है। ब्रह्मा बाबा का तो सबसे कठिन काम था कि ब्रह्मा बाबा ने उस सेवा का फाउंडेशन लगाया, धीरे धीरे ब्राह्मणों के लिए वो काम आसान हो गया क्योंकि उस सेवा के प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। फिर भी गांव गांव में, शहर शहर में बाबा ने का सेवा फैली हुई है। तो जैसे सूर्य की किरणें फैली हुई होती हैं, अगर उसको इकट्ठा किया जाए लेंस के नीचे तो आग लग जाती है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये मेरे हाथ में है, क्योंकि ड्रामा का कंट्रोलर बाबा है, तो बाबा कहते हैं ये मेरे हाथ में है कि सेवा को कैसे इकट्ठा करना है, आपके आगे उस सेवा को लाना है। शुरू में हम सेवा के पीछे भागते थे क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे सेवा हमारे पास आने लगी। और बाबा कहते हैं अब मैंने वो स्थिति, इतना बड़ा संगठन ब्राह्मणों का पवित्रता के आधार पर, बाबा ने कह दिया है ना कि पवित्रता ही आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, लोग किराए पर रह रहे हैं, नकली पवित्रता। जैसे बाबा ने कहा शिव के नाम पर एक दिन पवित्रता रख ली बस हो गई छुट्टी, है ना, इसलिए भगवान कहते एक दिन व्रत रख लिया, एक दिन बलि चढ़ गए, नहीं। तो ये जो धारणा बाबा ने कराई है इसके आधार पर दिल्ली वाले जानते हैं हम लोग धीरे धीरे चलते चलते छोटे प्रोग्राम करते रहे, फिर दादी प्रकाश मणि जी के कहने पर मेगा प्रोग्राम करते रहे, यानी समझिए कि हजारों की संख्याओं के प्रोग्राम करते रहे। बाबा ने यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल योग डे 21 जून को बनवा दिया, उसके कारण भी हमें योग दुनिया वाले तो आसन वासन सिखाते हैं शरीर के, उसमें भी बाबा ने हमारी मदद की। और अब ताजा फिर यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे करवा दिया, ये सब बाबा करवा रहा है। और इससे भी देखिए दुनिया के अंदर हमारे स्थान भी हैं, 153 देश दुनिया के यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है, जरा सोचिए। यानी क्या दुनिया सारी इकट्ठी होकर और क्या बाबा के बच्चे, और इसलिए बाबा अपॉर्चुनिटी देता जा रहा है। आपने देखा होगा हम लोग साधु संत सम्मेलन पहले भी करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पे करते हैं, हरिद्वार में करते रहे, इलाहाबाद में करते रहे, बनारस में कई जगह करते रहे। अब बाबा ने उस सेवा को इकट्ठा करके एक स्थान पर, वो भी अपने स्थान पर, बाबा के स्थान पर बाबा ने संत सम्मेलन कराया। और आप देखेंगे कितना ये एक गौरव का विषय है कि एक से एक साधु जिनकी धार्मिक पद्धतियां हैं, सैकड़ों साल से उनके अखाड़े हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, तो सारे के सारे और उनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं, सारे के सारे साधु बाबा एक मंच पर ले आए, वो भी अपने आश्रम में। आप साधु अपने आश्रम भी देखते हैं और बाबा का आश्रम भी देखते हैं। अच्छा, मातृशक्ति तो साधुओं में होती नहीं, वो तो माता को अपने कमरे में भी नहीं आने देते। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो शिव बाबा ने मातृशक्ति, फिर उनको मातृशक्ति का पता लगा, तो जिन्होंने भी, वो हम खुद आश्चर्यचकित थे कि महात्माओं के फोन आते जा रहे हैं, हमने भी आना है, हमने भी आना है। तो वो कहने लगे कि कुंभ तो बाद में है, हमारा कुंभ तो बाबा ने यहाँ करा दिया और माताओं बहनों को साथ कर लिया। और दो दिन के अंदर साधु महात्माओं के साथ हाथ मिलाकर नाचे, ऐसा तो संभव ही नहीं है दुनिया में कहीं। तो बाबा कहते हैं किसका कमाल है, तो सारे ब्राह्मण परिवार की पवित्रता का, सारे ब्राह्मण परिवार की अनुशुद्धि का, सारे ब्राह्मण परिवार के ज्ञान की ज्योत जगने का, सारे ब्राह्मण परिवार के त्याग तपस्या सेवा का। ठीक है, तो जब बाबा ये कर सकता है, देश का राष्ट्रपति बना सकता है, देश के बड़े बड़े नेताओं से ब्रह्मा कुमारियों को अब सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, अभी साधु लोग ये कह गए हैं कि हम अपनी साधु मंडली में एक ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन कराएंगे, एक ब्रह्मा कुमारी भी उसमें रहेगी। और वो ये भी कह गए हैं कि अगली बार हम देखना आप कितने महात्माओं को लाते हैं, और अब कुंभ मेले में हमारे प्रोग्राम रखिए, हम उसमें आएंगे। कितना चेंज बाबा ने करवाया है, हर एक ब्राह्मण खुश हो रहा है। तो इसलिए अब मौका है, जबकि पेड़ फलदार है और बाबा कहते हैं समय भी हमारा सहयोग दे रहा है, अब दुनिया डरने भी लग गई है, युद्ध इस स्थल पर पहुंच चुका है, जब सबके अंदर में हलचल है क्या होगा, सोचने लगते हैं, जब देखते हैं कि बम के साथ कितने कितने नगर उड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, डर लगता है उनको। तो बाबा कहता है इसलिए वो तो शरीरधारी हैं, इस वक्त मौका है। तो आपको पता हो कि अगर, वैसे तो बाबा ने कह रखा है कि कोई भी जोन कोई भी स्थान से प्रत्यक्षता हो सकती है, बाबा ने कह रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप किसी भी जोन में जाएंगे तो बहुत सारों ने बड़ी बड़ी नई नई चीजें की हुई हैं। अभी हमारे ओम प्रकाश भाई इंदौर वाले का बरसी आने वाली है, तो उनके मैंने पेपर पढ़े, उन्होंने कोई 12 तरह के पहल की हुई है, कई कई चीजों में पहल होती है ना, फर्स्ट क्या। खास तौर पे उन्होंने इंदौर हॉस्टल बनाया हुआ था जिसमें ब्रह्मा कुमारियां तैयार होती थी, देश भर की कन्याएं आती थी, ऐसे हर स्थान की बाबा ने विशेषता बताई हुई है। परंतु फिर भी दिल्ली को बहुत ज्यादा स्कोप है बाबा की प्रत्यक्षता करने का, क्योंकि एक तो दिल्ली राजधानी रही है और थी, है और रहेगी। दूसरे बाबा कहते हैं दिल्ली के अंदर सारे बड़े बड़े महारथियों ने यज्ञ के, बाबा मम्मा सहित वहाँ कदम रखा हुआ है, सबकी नजर दिल्ली पर है। और दिल्ली में कोई कार्य होता है तो सारे भारत में उस फैल जाता है, और किसी कोने में होता है, मान लीजिए वही कार्य तिनसुखिया में हो तो इतना फैलेगा नहीं, माउंट आबू में तो भी इतना फैलेगा नहीं, क्योंकि वो कैपिटल है, उसके अंदर सब देशों के राजदूत रहते हैं, सब प्रांतों के स्थान हैं। इसलिए दिल्ली वालों को ये जो है उमंग उत्साह सदा कायम रखना, उमंगों के पंख लगा के उड़ते रहना, तो अगर हम एक अपने अंदर एक प्लान बनाए, क्योंकि शिव जयंती आने वाली है और शिव जयंती में ही शिव का परिचय लोग आसानी से सुन सकते हैं। शिव का परिचय और दिन भी देते हैं, लेकिन जिसका दिन होता है उस दिन लोगों का ध्यान जाता है। तो शिव जयंती आने वाली है, इसको हम ऐसी शिव जयंती समझें जैसे बाबा ने कहा है कि एक एक बच्चे से, एक एक बच्चे से क्या दिखाई दे, एक एक बच्चे से शिव बाबा दिखाई दे। अब कई समझते हैं ये कैसे दिखाई देगा, तो बाबा ने तरीके भी बताए हैं कि एक तो अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। ये सब सूक्ष्म हथियार हैं, हमको कोई स्थूल हथियार रखने की जरूरत नहीं है। एकाग्रता की शक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ताकत भरी जाती है, जैसे हम संगठन कहते हैं, तो एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ेगी कि हम अपने सारे दिन के अंदर जो कुछ भी करते हैं, जो कर रहे हैं उस पर हम एकाग्र रहें। क्या होता है, मान लो आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते हुए आप सोचते हैं मुझे ये काम करना है आगे का, या पीछे का सोचने लग जाते हैं कल ऐसे हुआ था। नहीं, स्नान करते समय स्नान पर ही एकाग्रता देनी है। एक तो आपका स्नान ठीक होगा, थोड़ा समय लगेगा तो आपको खुशी भी होगी कि मेरा समय बच गया। आप भोजन कर रहे हैं, आप अपने कमरे से भंडारे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जो काम आप कर रहे हैं उसका ध्यान करें, इसको कहते हैं एकाग्रता। तब हमारा, जब हम शिव जयंती का मैसेज देंगे, शिव बाबा पर एकाग्र होंगे तो दूसरे को शिव बाबा दिख सकता है। जैसे पानी के अंदर पत्थर मार दो तो लहरें उठती हैं तो धरातल नहीं दिखता, खड़ा पानी में दिखता है। इसका अर्थ यही होता है, एकाग्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप आधा घंटा एक स्थिति में बैठ जाओ, ये अभ्यास है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसका ही ध्यान हो। मान लीजिए आप योग कर रहे हैं तो सेवा के ख्याल ना आए, सेवा कर रहे हैं तो ये ना सोचें योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एकाग्रता की शक्ति बाबा ने आज भी कहा है, इसको धारण करें। दूसरे बाबा कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को महसूस हो इनको कुछ मिला है। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन लॉकर के अंदर पड़ा है, आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए बाबा ने कहा है कि संतुष्टता। संतोष एक ऐसी चीज है, संतोष के लिए कहा गया है कि अगर भिखारी संतुष्ट है वो भी राजा है, और अगर राजा असंतुष्ट है वो भी भिखारी है। तो संतुष्टता अर्थात किसी प्रकार की भी ब्राह्मण को अप्राप्ति की लहर भी ना आए, ये हम अपने जीवन में ध्यान रखें। ऐसे नहीं कहीं ट्रेन लेट हो गई या मिस हो गई तो हमारे चेहरे पे अरे ये क्या हो गया, ट्रेन मिस हो गई है, कल पहले भी हुई थी। कई चीजें दुनिया में होती हैं, पर हम तो इन चीजों को जानते हैं ना, ये नाटक है। बाबा ने कल भी कहा है कि किसी को दोषी नहीं ठहराना, हम अपने आप को भी दोषी ठहराने लग जाते हैं। इसलिए संतुष्टता से आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता से दूसरे को लगेगा कुछ लौकिक प्रसन्नता नहीं है, अल्पकालिक प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता दुनिया वालों को भी होती है, लेकिन वो विजय में खुशी में होती है, जब विजय गई खुशी गई तो चेहरा लटक जाता है। तो हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहें, क्यों नहीं रहें, स्मृति में रहेंगे तो रहेंगे और प्रसन्न रहें। और फिर बाबा कहते हैं कि बाबा ही पर हम अगर एकाग्र होते हैं तो लौकिक काम करते हुए भी, जिसको विदेही कहा गया है, ये हमारा आंतरिक अभ्यास है, हमारी सेना के आंतरिक हथियार हैं। अगर हम विदेही होने का अभ्यास करते हैं, अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, सचमुच बोलते नहीं सिर्फ कर्मातीत होने का अभ्यास करते हैं, तो बहुत फायदा है। कोई आपके पास आके झरमुई झरमुई कर रहा है, कोई कोई फालतू की बात सुना रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, आप न्यारे हो जाओ, आपके ऊपर असर ही नहीं आएगा। इसलिए ये अभ्यास बहुत काम आता है, आगे को तो और भी काम आएगा। तब बाबा कहते हैं कि बाबा अगर हमारे अंदर होगा तो जब कोई सामने आएगा तो जो अंदर होता है वो बाहर दिखता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर किसी के अंदर कोई चिंता लगी हुई है तो उसके चेहरे से चिंता के भाव दिखेंगे। किसी का चेहरा शीतल है, उसके चेहरे से शीतलता के भाव दिखेंगे। किसी के अंदर अभिमान है, उसके अभिमान की झलक उसके चाल ढाल में दिखेगी। इसलिए बाबा कहता है हमको तो अब वापस ही जाना है, वो अभ्यास हमें बाद में भी काम आएगा, तो सेवा की स्पीड बढ़ेगी। इसके लिए हम पहले ये धारणाएं अपने अंदर बनाएं। भोजन का भी बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा ने बता रखा है कि भोजन याद में करो, याद में बनाओ, और अब वो समय आ गया है जब हमको भोजन के टेस्ट, भोजन की शारीरिक अल्पकालिक स्वाद उसको बदलकर इसको एक जीवन जीने का साधन समझना है, उससे रोग भी कम होते हैं। बाबा ने सब बताया हुआ, तो इंटरनल अपने ऊपर बाबा ने ये भी कह रखा है, सो परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। भाषण करने से वो मददगार चीजें हैं, प्रोग्राम करने से। इसलिए आगे जब हम प्रोग्राम करें तो योग युक्त बहने, योग युक्त भाई उस प्रोग्राम में स्टेज पर जरूर हों। आगे भी हम रखते हैं योग युक्त बहन भाई सभा में भी हों। आमतौर पे हम कहते हैं हम तो सभा में बैठे हैं, मेरा क्या रोल है। ये भी एक प्रकार का बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मेरा क्या रोल है। हम सबका रोल है, ऐसे नहीं कोई जो कोई भाषण कर रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है, फोटो ले रहा है, उसका ही रोल है। हर एक का रोल है। तो ड्रामा में जब हम कहते हैं हर एक का रोल है तो हमारा तो बहुत बड़ा रोल है। हम सभा में भी, अब देखिए सभा मान लीजिए अब एक मिनट बाद पूरी होनी है, हम सोचते हैं अब तो फालतू सी बात होनी है, मैंने सुन लिया, उठ के चले जाते हैं। ये भी हमारे अंदर असंतुष्टता पैदा करता है, ये हमारे अंदर एक कमी पैदा करता है। शिष्टाचार ये कहता है कि हम बहुत धैर्य से उठें, पूरा प्रोग्राम अटेंड करने उठें, बाहर कोई आग नहीं लग गई है या पता नहीं ऐसा नहीं हो गया, तो हमारे अंदर ये जो विचार आता है कि हमारा यहाँ बैठना फजूल है, तो बाबा कहता है यहाँ बैठना तो काम का है, बाहर जाना फजूल है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कारण से, आप देखिए मान लीजिए इस हॉल में बिठाने वाले हैं, अब वो आपको नहीं जानते, वो आते हैं, उनके अपने नियम हैं, आपको लाइन में खड़ा कर देते हैं, इधर खड़े हो जाओ, आप ऐसा दिल खराब करते हैं, अरे छोड़ो इससे तो ज्यादा कमरे में बैठकर टीवी भी देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्यों? कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति के व्यवहार का असर आ गया, क्या उसका व्यवहार ठीक था या गलत था। आप कमरे में चले जाओ, जितना टाइम आप चाहे मुरली सुनते रहो, कुछ रहो, आपके अंदर ये ग्लानी आती रहेगी कि मैं संगठन में नहीं हूँ, जो मुझको जानते हैं वो भी अगर पूछ लें भी आप सभा में क्यों नहीं आए थे, वो भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो जो हमने छोटी सी चीज़ को ना सहन करके हमने वो चीज़ खोई कि बाबा के घर में हम आए हैं, साल में एक बार आए हैं। कई कहते हैं मुझे पिछली सीट दे देते हैं, बाबा कहते हैं पीछे वाले को तो मैं पहले देखता हूँ। इसलिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत सूक्ष्म ढंग से हम बड़े वैल्यूएबल है, हमारा किसी जगह जाना भी वैल्यूएबल है, हाजिर होना भी वैल्यूएबल है। मान लो हमारे लिए कोई प्रोग्राम रखा जाता कहीं, हम कहते हैं क्या जाना है, वहाँ के लोग चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे प्राप्ति होगी, नहीं तो मैं उस प्राप्ति से वंचित रह जाऊँगा। ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े वंचित इकट्ठे होते होते हमें निराश कर देते हैं। तब बाबा ने कहा जो मैं है मैं कई प्रकार की बताई है, मैं अभिमान में भी लाती है, मैं दिल कष्ट भी करती है, मैं सोमान में भी रखती है, मैं खुशी भी दिलाती है। तो मैं जो हूँ, मैं सदा सोमान में रहूं, सदा खुश रहूं। एक फौजी भी, सिपाही भी जो होता है घर में साधारण होता है, जो ही वो सिपाही की वर्दी पहनता है उसके अंदर सोमान आ जाता है, मैं सिपाही हूँ। कोई भी व्यक्ति, साधु भी अपने श्रृंगार सुबह करता है, तिलक वगैरह लगाता है, तब उसको फील होता है मैं सिपाही हूँ। जज भी घर में तो जज, जब जज की कुर्सी पर बैठता है, तो हमको तो बाबा ने इतने सामान दिए हुए हैं, बाबा कहते हैं एक सामान भी पकड़ लो आप, और उसके साथ साथ आपको जैसे आई खुशी दिलाएगा। तो बाबा तो सारे फार्मूले बताता है, हम उसको स्थूल में ले जाते हैं या लापरवाही कर देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं अलबेलापन। और माया का यही हथियार है, आलस से तो फिर भी हम बचे रहते हैं, लेकिन ये जो अलबेलापन है, चल रहा है, इस साल शिव जयंती आई, पहले भी आई थी, आगे भी आ जाएगी, ये माया की चाल है, इससे हमें बचना है। इसलिए अगर हम अपने अंदर, अपने ऊपर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ सबसे जो बाहर वाले आएंगे उनको बाबा भी दिखेगा, आपकी एकाग्रता भी दिखेगी, आपकी प्योरिटी की धारणा तो दिखती है। तो बहुत जल्दी जो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जरा मुरली में कहा है कि नहीं, मेरे लिए तो बहुत सेकंड है पर्दा खोलना, मैं तो ताली बजाऊं तो काम शुरू हो जाएगा। जैसे राजा लोग ताली बजाते थे ना, ताली बजाओ ये कार्य शुरू हो जाए, मैं तो ताली बजाऊंगा फटाफट काम शुरू हो जाएगा। पर मैं आपके लिए ताली रोकी हुई है कि आपकी तालियां बजे फिर मैं ताली बजाऊं। ओम शांति।
खुशी रहो।